वंदितु सव सिद्धे धूमचल मनोभवम गयम पते ओछामि समय पावड़ मिनु सुद केवली फणिदम
व्यवहार नयो भाषद जीवो देहो यहावधि खलु एको नदु निश्चय सजीवो देहो एकदावि एकट्टो व्यवहार ने बताता है कहता है जीव और देह इन दोनों में ऐक्य है, ये दोनों एक में हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझ ले तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, जीव और देह एक हैं, इसका अर्थ तो दो होते हुए भी एक हैं, अपने आप सिद्ध हो रहा है। मतलब दो तो हैं लेकिन एक हैं, कैसे एक हैं, तो देखने में एक हैं, एक को खींच ले तो दूसरा भी आ जाता है। इतने नहीं, एक जीव रहता है तो अनंत जीव उसके साथ साथ पलते रहते हैं, एक श्वास लेता है तो अनंतों को श्वास श्वास, एक भोजन लेता है तो अनंतों का भोजन होता है, एक जन्म लेता है तो अनंतों का जन्म हो जाता है, एक मरण को प्राप्त होता है तो अनंत का मरण होता है। एक को क्यों, अनंत जीव और एक शरीर और दोनों एक में है, तभी तो इस प्रकार मृत्यु और जीवन होता चलता है, भोजन और श्वासोश्वास होते रहते हैं। कैसे, यह व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार में कई प्रकार के व्यवहार हैं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नया अपेक्षा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म नाम करता अयम आत्मा, राग द्वेषादि विभाव परिणामा नाम करता अशुद्ध निश्चय नया अपेक्षा, और नौ कर्म के भी वह करता है असद्भूत व्यवहार नहीं के पीछा से, क्योंकि एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध जहां पर होता है, जिस क्षेत्र में आत्म तत्व है उसी क्षेत्र में यह जड़ तत्व भी है, उसको अलादा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा रसायन हुआ है जिस रसायन को फेल करने के लिए हमें उस प्रकार के भावों को करना अपेक्षित होता है जो भाव शरीर बनाने के लिए कारण है, उससे ठीक विपरीत भाव। राग के द्वारा ज्ञानावरणादि शरीर आदि नौ कर्मों का यदि कर्म बनता है तो वीतराग भाव के द्वारा ही इनका विछड़न संभव है। इसलिए ये एकमेक एकांत से हो जाते हैं तो इनका विछड़न संभव ही नहीं होता। इसलिए व्यवहार नहीं के अपेक्षा से देह और जीव ये दोनों एक हैं, निश्चय नहीं के अपेक्षा से कभी भी ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य समाहित नहीं हो सकता। एक जीव एक कर्म बंध स्पर्श और एक कर्म स्पर्श, यदि आप लोगों को धवला इत्यादि का मानो सुनने का अवसर मिला है तो उसमें ये प्रकरण आता है कि जीव कर्म बंध और कर्म बंध स्पर्श और कर्म स्पर्श में क्या अंतर है। बंध स्पर्श जो जीव कर्म भाव करता है उसी के साथ बंध स्पर्श होता है, और कर्म स्पर्श का अर्थ यह है कि कर्म वर्गणाएं जहां पर स्थित हैं वहीं पर जीव रहता है और उसके प्रदेश और इसके प्रदेश टच हो जाते हैं, इस अपेक्षा से वह कर्म स्पर्श माना जाता है। इसी प्रकार जीव स्पर्श भी कहा है, निगोदियां जहां पर रहते हैं वहीं पर और भी जीव रहते हैं, वह जीव स्पर्श माना जाता है, लेकिन जीव बंध स्पर्श नहीं माना जाएगा। बंध स्पर्श में जो जीव जैसा भाव करता उस जीव के आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का बंधन होता है, उसका नाम कर्म बंध स्पर्श कहा गया। इसी प्रकार अन्यत्व ले लेना, द्रव्य स्पर्श क्या होता है, जहां पर द्रव्य द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य छौं रह रहे हैं, आपस में इनका द्रव्य स्पर्श है, रहता रहेगा, क्योंकि एक क्षेत्र में ही छौं द्रव्य समाहित है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं आकाश का लोकाकाश का जहां पर एक द्रव्य की अनुपस्थिति हो। काल है वहां पर तो दूसरों की अनुपस्थिति है नहीं, एक प्रदेश में यदि मान लो कालानु है, वहीं पर जीव के भी प्रदेश मिलेंगे। असंख्यात प्रदेश वाला है, असंख्यात प्रदेश में तो एक प्रदेश तो वहां पर होगा। इस ढंग से उसमें एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं होता जहां पर जीव ना हो, पुद्गल ना हो, आकाश ना हो, काल ना हो, धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो। ये बंध स्पर्श नहीं किंतु यह द्रव्य स्पर्श जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार देह और जीव इन दोनों का एकमेक होना बंध स्पर्श में आ जाता है। इसलिए लक्षण के अपेक्षा से दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, यह निश्चयने का विषय है। इस बात को हमें अब समझना है कि यह रसायन यदि देह के साथ आत्मा का है, अब समझो देह की रचना हुई शरीर नाम कर्म के उद्देश्य, शरीर नाम कर्म के उद्देश्य यदि देह की रचना हुई है तो आत्मद्रव्य तो उसमें है ही नहीं। लेकिन रचना कहां पर हुई ये पूछो तो अपने आप ही ज्ञात होगा। शरीर नाम कर्म का उदय कहां पर है तो जिस जीव जहां पर रह रहा वहीं पर उसी के हैं, वहीं पर अनंत जीव और भी हैं, उनका औदारिक नाम शरीर नाम कर्म का उदय पृथक है और हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय पृथक है। हमारे कर्म का उदय जब होगा तभी उसके साथ यदि इंद्री की व्याप्ति लगती है तो एक इंद्री है, द्विइंद्री है, तीन इंद्री है, चौर इंद्री है, असंख्य पंचेंद्रिय है, वो सारे सारे जीव उसी स्थान पर है। उनकी जीव की शरीर की रचना नहीं होती, हमारी होती है, क्योंकि हमारे पास संगी पंचेंद्रियत्व है। पर्याप्त है तो पर्याप्त है, अपर्याप्त हो तो अपर्याप्त है। इस प्रकार ये वर्गणाएं उसी जीव से संबंधित हो जाती हैं और उसी जीव के लिए औदारिक शरीर का निर्माण करते हैं जिसके कर्म के उदय जैसा चलता है। कहने में तो एक सारे सर जीव एक स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था देखो कितनी पृथक व्यवस्था है। वहीं पर हम लोगों का बंद हो रहा है, बंद हो रहा है वह उदय में नहीं आ रहा, अभी जो बद्ध है वह उदय में आ रहा है। वहीं पर उदीर्णा हो रही है, वहीं पर बंद हो रहा है, वहीं पर सत्व भी है, वहीं पर उदयावली है, उदयावली का निषेध कभी भोगने में नहीं आता, क्योंकि उदयावली और उदय में बहुत अंतर है। यदि उदयावली नहीं हो तो क्या होगा, उदयावली यदि नहीं हो तो यह होगा कि स्तवक संक्रमण के अभाव के कारण स्वमुख से ही उदय में आएंगे। उदयावली है बहुत बड़ा काम है, उदयावली यदि नहीं हो तो सारे सारे स्वमुख से आएंगे, या तो सत्ता में उपशमित होना पड़ेगा, उपशमकरण अंतर मुहूर्त का होता है। तो ऐसी स्थिति में कितनी व्यवस्थित का बहुत व्यवस्थित कार्य चल रहा है। एक समय पूर्व में उसका उदयावली में अस्तित्व रहता है, मान लो क्षोपम समय दर्शन है तो मिथ्यात और समय मिथ्यात ये दोनों आपके यहाँ उदय में नहीं आएंगे, लेकिन समय प्रकृति के रूप में उदय में आकर के चले जाएंगे। उनका उदयाभावी क्षय माना जाता, उदय का अभाव रूप क्षय माना जाता। और प्रकृति का भी यदि मान लो उदय नहीं हो तो क्या करेंगे, तो उपशम का काल होगा तो ये स्थिति बनती है, अन्यथा बन नहीं सकती। मिथ्यात् उदय है तो समय प्रकृति, समय मिथ्यात् इन दोनों के यदि सत्य होता है तो उदयावली मां करके निकलते चले जाते हैं। समय मिथ्यात् के यदि उदीर्ण होती है तृतीय गुण स्थान में तो मिथ्यात् और समय प्रकृति दोनों उस मुख में आकर के चले जाते हैं। यह कार्यक्रम चलता रहता है। इसलिए कर्म बंद हुआ और कर्म बंद के अनुसार नो कर्म नो की जो कि शरीरादिक हैं, कर्म बद्ध जो उदय में आएगा उसके फल के लिए यह सहायक होता है, इसलिए इसको नो कर्म कहा है। ये कर्म नहीं किंतु नो कर्म है और नो कर्म के बिना फलानुभूति संभव नहीं है। अब नो कर्म कई प्रकार के मिल जाते हैं। नो कर्म दो प्रकार के, शरीर आदिक और जो यह भोगो भोगी सामग्री जो पौद्गलिक है, ये सारे सारे नो कर्म के रूप में आ जाते हैं। और कर्म फल जब मिलता है उस समय ये जीवात्मा ऐसा सोचता है कि यह पृथक भूत जो नो कर्म है इसके द्वारा मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये इसका अज्ञान है। और वह अज्ञान भी अनंत कालीन संस्कारित है, इसलिए बार बार वह उसी के ऊपर टूट पड़ जाता है। इसको लेकर के ही शिष्य कहता है कि हे भगवान, बिल्कुल जैसे फल मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि जीव और देह एक नहीं है, हमें समझ में नहीं आता आप क्या समझा रहे हैं दुनिया को। समझ में तो ये आ रहा है कि शरीर सो आत्मा कुछ, आत्मा को शक्ल नहीं देखने में आया आज तक, आत्मा की बात क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता। जो दिखता है उसको आप आत्मा नहीं बोल रहे हैं और जो नहीं दिखता वो एक अलग अस्तित्व, हमें समझ में नहीं आता आपका दिव्य ज्ञान है कि हमारा दिव्य श्रद्धान है, क्या है समझ में नहीं आता। संवेदन हो रहा है, शरीर से पृथक कभी भी आत्मा का अनुभव हो ही नहीं रहा। आपके कहने से हम आत्मा आत्मा कह रहे हैं, जीव जीव कह रहे हैं, लेकिन अनुभव में तो यही आ रहा है। आठ प्रकार के स्पर्शों का, पांच प्रकार के रसों का, दो प्रकार के गंधों का, पांच प्रकार के वर्णों का, और शब्द ध्वनि सुनते हैं, ये सब क्या है? और इसमें कोई भी आत्मा आती है ही नहीं, फिर भी आपके कहने से हम मान रहे हैं कि आत्मा सो देह, देह सो आत्मा कहना चाहिए, इसके उपरांत भी आप नहीं कहना चाहते। व्यवहार की अपेक्षा से है, अब ये कौन सा व्यवहार है आपका, हम समझ में नहीं है। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय कह रहे, हाँ लक्षण के अपेक्षा से ये दोनों पृथक पृथक हैं, और एक क्षेत्रावगार संबंध के अपेक्षा से एक हैं, दोनों एक हैं। कभी कभी कहने में ऐसा मित्रता किसी की ज्यादा हो जाती है तो ये क्या कहें, हम तो ये कहना चाहते हैं ये देह की अपेक्षा से दो हैं लेकिन विचार की अपेक्षा से एक हैं। हाँ इनकी आत्मा तो एक हैं क्योंकि विचार आचार की अपेक्षा से एक हैं, और देखने व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय कह रहे, हाँ लक्षण के अपेक्षा से ये दोनों पृथक पृथक हैं, और एक क्षेत्रावगार संबंध के अपेक्षा से एक हैं, दोनों एक हैं। कभी कभी कहने में ऐसा मित्रता किसी की ज्यादा हो जाती है तो ये क्या कहें, हम तो ये कहना चाहते हैं ये देह की अपेक्षा से दो हैं लेकिन विचार की अपेक्षा से एक हैं। हाँ इनकी आत्मा तो एक हैं क्योंकि विचार आचार की अपेक्षा से एक हैं, और देखने में शरीर दो हैं, देखने में शरीर दो हैं। इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में एक और विसंवाद चलता है, ये कहने में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग है कि चेतना एक ही गुण है, संवेदन में वो ही था, इसलिए दर्शन कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा किसी ने लिख भी दिया और तर्क सतर्क है, वो तर्क सहित लिखा, समझ में यही आता। तो अर्थ क्या हुआ, ये है नहीं ऐसा नहीं, समझ में नहीं आ रहा या उदाहरण नहीं दिया जा रहा इसलिए वह है नहीं ऐसा कहना तो गड़बड़ है। अनुपलब्धि ये हेतु ठीक नहीं माना जाता, सर्वज्ञ नहीं क्योंकि दिखते नहीं, बस दिख नहीं रहे इसलिए सर्वज्ञ नहीं, तो आत्मा ही नहीं कहो ना क्या बात है, सर्वज्ञ की क्या बात, आत्मा ही नहीं जो दिखता है नहीं, अनुपलब्ध जब कभी भी हाथ लगता तो शरीर लगता, शरीर सो आत्मा है इतना ही मान लो सामने वाला कहता है। निश्चय ने से जीव और देह एक नहीं क्योंकि वह लक्षण को लेकर के चलता है, और व्यवहार जो चलता है वह लक्षण ने जो दिखता है उसी में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। व्यवहार नहीं हो भाष्यते ब्रूते, व्यवहार नहीं का कथन क्या है, जीवो देहस्य भवति खलु एकः, जीव और देह दोनों एक होते हैं। न तु निश्चयेन अभिप्रायेण जीवो देहस्य कदाचित काले एकार्थः एकः भवति, किंतु निश्चयेन के अभिप्राय से जीव और देह दोनों कभी भी किसी भी हालत में एक नहीं है। यथा कनक कलधौतयोः समावर्तित अवस्थायां व्यवहारेण एकत्वेपि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीव देहयोर् इति भावार्थः। जैसे उदाहरण दे देते कि स्वर्ण है और कलधौत का अर्थ होता है चांदी, चांदी और स्वर्ण इन दोनों का मिश्रण करने करके कोई भी एक आभरण बनाया जाता है तो एक मेक जैसा ही हो जाता है, लेकिन लक्षण के अपेक्षा से उसमें कितने तोला चांदी है और कितने तोला स्वर्ण है इसके बारे में सुनार अवश्य आप लोगों को जानकारी दे देता है। फिर भी आप उसके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते कि भैया दोनों एक मेक है, इसके और कुछ है ही नहीं, चांदी अलग ही है, ऐसे ढालने के उपरांत ऐसा लगता है। तो जीव और देह ये दोनों इस प्रकार ढल चुके हैं रसायन के माध्यम से, इस प्रकार ढल चुके हैं कि वह पृथक पृथक दिखते ही नहीं। और दिखने में इंद्रिय गम्य जो होता हुआ शरीर, क्योंकि उसमें रूप रसगंधात्मक, इससे विपरीत लक्षण रखने वाला जीव उस पकड़ में नहीं आता। तो क्या करें, पकड़ में नहीं आता लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं, क्योंकि रूप रसगंध स्पर्श के अलावा पुद्गल के पास और जानकारी के लिए कोई साधन है ही नहीं। रूप रसगंध स्पर्श जहां रहते हैं वहां पर जानकारी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब तक इसमें आत्मा रहता तब तक के लिए इसके माध्यम से जानकारी मिलती है और इंद्रियों के द्वारा जानकारी मिलती है, इसलिए देह में ही ज्ञान है ऐसे उसकी परिकल्पना है। लेकिन जब वह आत्मराम चला जाता है तो ये ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। उस समय पूछा जाता है तो क्या है, यह उसका जो रसायन है उसमें विकार आ गया इसलिए जीव था ही नहीं, ऐसा कहने लग जाए। स्याही है लेकिन उसका सत्व निकल गया और घोल तो काफी है, उसको निभ डुबो दो, लिखो तो लिखता ही नहीं, क्योंकि उसका सत्व जितना स्याहीपन था वो निकल गया। उसी प्रकार वट का कहना है कि आत्मा तो कहीं दिखते हैं नहीं, वह उसका सत्व समाप्त हो जाता है तो रह जाता है। अपने अपने जो औषध है ना, औषध एक्सपायरी डेट, हाँ तो कितने, तो 9 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 1 साल के लिए है, 11 महीने आदि आदि उसकी डेट है, तारीख है, उसके उपरांत वह एक्सपायर। वो जीव है क्या? जीव नहीं, शक्ति का अभाव होने का नाम है एक्सपायर। इसी प्रकार देह में से शक्ति समाप्त हो जाए तो इसलिए तो एक्सपायर, काम करते रहते तब तक जीव है। देह को छोड़ करके कोई आत्म तत्व है ही नहीं, ऐसा उसका निर्णय है। और इसी को भौतिकी युग बोलते हैं, चार्वाक इसी को बोलते हैं। वो कहता है कि इधर उधर की बातें मत करो, जब तक है तब तक खूब खाओ पियो, और ऐसा कहो क्या पियो, घी पियो, रनम कृत्वा घृतम खादे तो नहीं कहता वो, हाँ दूध पियो ये तो फिर भी ठीक है, जल पियो ये फिर भी ठीक है, छाछ पियो फिर भी ठीक है, लेकिन कहता नहीं तुम जिसको खाते हो जल्दी जल्दी खाना नहीं होता, पीना जल्दी होता, इसलिए घी स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता, खूब उसको पियो, यदि नहीं मिलता तो ऋण ले और पियो, लोन इसको, लोन क्या बोलते हैं आप लोग, लोन ले लो बैंक से। अब तुम्हारे बेटा वगैरह संतान वगैरह देते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, उन लोगों ने भी तो खाया है, हमने कर्ज निकाला था उनको खाने के लिए मिला, वो कर्ज निकालेंगे हमको खाने में मिलेगा, चलो खाओ नहीं पियो नहीं, वो जुड़ाओ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये तो राख राख होने वाली है, इसलिए होने से पूर्व में खाओ पियो मौज उड़ा, ये कहते। ये तपस्या और ये वो कुछ समझ में नहीं आता है। चीजें खाने पीने के लिए है, खा लेना चाहिए, और शरीर उसी के लिए है ये, लेकिन इसकी धारणा जो दिखती है उसी के ऊपर बन जाती है। बहुत कठिन है। ग्रहित मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात, दूसरे को देख करके क्रोध, दूसरे को देख करके मान, दूसरे को देख करके माया, दूसरे के देख करके लोभ, ये भी ग्रहित हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। धारणा देख करके बनते हैं, इसको ग्रहित बोलते हैं। ग्रहित देशना भी होती है तो ग्रहित मिथ्यात्व भी होता है। अग्रहित क्रोध, अग्रहित मान इत्यादि जितने भी हुआ असंगी पंचेंद्र तक रहते हैं, अग्रहित कषाय जिसको बोलते हैं, दूसरे के द्वारा प्रशिक्षित के माध्यम, प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जाता, सहज रूप से होते रहते हैं। लेकिन संगी पंचेंद्र होने के उपरांत ग्रहित भी जुड़ जाता और अग्रहित भी जुड़ जाता, जिसको वासनाकार बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति मिल जाता और देखते ही उबलने लग जाता और देखते ही फूलने लग जाता। दो बातें हैं, देखते ही ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा कोई और अन्य समय में संबंध है। वह संबंध दो प्रकार का हो सकता है, एक वैरी के रूप में हो सकता और एक मित्र के रूप में हो सकता, एक हेतु के रूप में हो सकता, एक हेतु के रूप में हो सकता, एक और अहित के रूप में, शत्रु के रूप में हो सकता, हो सकता है। इस ढंग से वह संस्कार उसके हुए रहते हैं, तो ग्रहिता ग्रहित ग्रहिता ग्रहित इस संसार में चलता ही रहता है, पता नहीं रहता, क्योंकि अतीत तो अनंत है, उसका कोई अंत है नहीं, संस्कार उसके पड़े हुए रहते हैं, वासना काल चलता रहता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के वेदन काल, सम्यक दर्शन का क्या वेदन काल, छायोपशम सम्यक दर्शन की जब तक सीमा रहते उसका नाम वेदक काल बोलते हैं। सम्यक दर्शन यदि होगा तो वेदक सम्यक दर्शन ही उसको होगा, फिर इसके उपरांत उपशम सम्यक दर्शन की उसकी भूमिका बन जाती है। कर्मों के भी ऐसे रहते हैं, तो यह रहस्य वह नहीं समझ पाता, इसलिए कहता ततः कारणात व्यवहार नहीं न देह स्तवन आत्मस्तवनम युक्तम। इसीलिए देह व्यवहार ने की विवक्षा में देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है और यह उपयुक्त है, यह गलत नहीं है। व्यवहार नहीं का कथन गलत नहीं है, व्यवहार ने की विवक्षा में स्तुति गलत नहीं है। व्यवहार ने के साथ देह के साथ ही यदि हम स्तुति वंदना आदि आदि का संबंध रखते हैं तो गलत नहीं, युक्ति युक्त है, बल्कि यूं कहना चाहिए तन निसर्गात अधिकमात्वा। ये क्या है? और निसर्ग में ऐसा भी कहीं कहीं पर कहा कि जिको बिंब को देखने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। होता है क्या? नहीं होता है। वो क्या है उसमें बताओ? पाषाण का बिंब है, सोने का बिंब है, चांदी का बिंब है, उस बिंब में क्या है? तो यही तो है बिंब, उसी को बोलते हैं। इसको प्रतिबिंब भी बोलते हैं, प्रतिमा भी बोलते हैं। ये क्यों? वो उसका एक रूप है, उसका एक आकार बनाया है। भाव निक्षेप की अपेक्षा से बिंब तो नहीं है, तो भाव निक्षेप की अपेक्षा से जीव है क्या? बताओ। भाव निक्षेप की विवक्षा में क्या समोसरण में आपने बिंब तो नहीं देखा? हमने साक्षात भगवान को देखा, आंख के द्वारा भगवान दिखने ही नहीं आते, और आप कह रहे हैं साक्षात और उन्हीं के चरणों में साक्षात जब भाव निक्षेप के द्वारा रहते हैं उसी से क्षाई सम्य दर्शन होता अथवा तीर्थ प्रकृति का बंध होता, नहीं तो नहीं होता। आप बताओ साक्षात आपने भगवान को कहाँ देखा? इस समूसरण में विराजमान है, 12 सभा लगी है, तो 12 सभा कौन से है? रूपी है, हाँ रूपी है, और भगवान बताओ, भगवान तो जीव का स्वरूप है, तो रूपी है क्या? रूपी है बताओ तो ना, जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप आपने देखा? हाँ बिल्कुल, इन्हीं आंखों से देखा, स्वप्न में नहीं, स्वप्न में कैसे देखते, हमने आंखों से देखा। हाँ तो आंखों से के द्वारा भगवान दिखते हैं, यदि भगवान दिखते हैं तो व्यवहार से दिखते हैं कि निश्चय से दिखते हैं? तो व्यवहार से दिखते हैं कि निश्चय से दिखते हैं पूछेंगे, और यह आगम का कथन सारा झूठा हो जाएगा। इसी को व्यवहार बोलते हैं, लेकिन यह औपचारिक व्यवहार नहीं है, काम चलाऊ व्यवहार नहीं है, जो निश्चय है उसका कारण है यह व्यवहार। ध्यान में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, यह सब गलत है, साकार उपयोग में होता है और चिंतनात्मक होता है, ऊहा पोहात्मक होता है। ध्यान तो लगता ही नहीं, ध्यान तो बाद में लगता है, उस समय नहीं, जागृत होता है और उसके विषय होते हैं 7 तत्व विषय हैं, 9 पदार्थ विषय हैं, 6 द्रव्य विषय हैं, 5 अस्तिका विषय हैं, रत्नत्रय विषय या देव गुरु शास्त्र विषय हैं, ये सब है उसके विषय, कुछ है ये सब है उसके विषय, कुछ हे के रूप में, कुछ उपाधे के रूप में, कुछ गे के रूप में, इस रूप में वो स्वीकारना होता है। ये सविकल्प दशा में इस प्रकार सम्यक दर्शन होता, यह व्यवहार है। सर्वज्ञ को किसी ने आज तक नहीं देखा इन आंखों से, इसलिए सर्वज्ञत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो एक व्यवहार का कथन है, विषय है, विषय है। जानना आत्मा का स्वभाव है, सबको जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह व्यवहार से। पर को भी जानना, तो पर को जानना होता तो व्यवहार से ही जाना जाएगा, निश्चय से नहीं जाना जाएगा। निश्चय में एक द्रव्य को छोड़कर के दूसरे द्रव्य के ऊपर डिपेंड हुआ नहीं जाता, दिख जाता है तो भी वह प्रमेय गुण की विशेषता पर की है, वो आत्मा के नहीं है, आत्मा के पास ज्ञत्व स्वभाव है। इस प्रकार यह व्यवहार ऐसा है कि जो निश्चय का साधक होता है, ध्यान के अभाव में सम्यक दर्शन की भूमिका में यह व्यवहार अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रकार का सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, और इसमें दर्शन मुनि का क्षय सूक्ष्म होता है, क्या निश्चित रूप से होता है, यदि नहीं होता है तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गात अधिगमात्वा, यह अधिगमात्वा यह नहीं कहा जा सकता। भगवान तो बोलते रहे, आचार्य महाराज तो बोलते रहे, देखना सुनने वाला ध्यान में मस्त हो जाए, भगवान तो बोलते रहे, देखना देते रहे, मुनि महाराज जो है देखना देते रहे, और वो सामने वाले जिसको सम्यक दर्शन होता है वो ध्यान में लीन हो जाए, ये कौन सा है? ऐसा है ही नहीं। निर्विकल्प समाधि में जो सम्यक दर्शन होता है, जैसे क्षोक्षम सम्यक दर्शन से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, उसी प्रकार सराग सम्यक दर्शन से वीतराग सम्यक दर्शन की वह यात्रा हो जाती है। ये नियम है, औपशमिक के बाद क्षायोपशमिक होगा, क्षायोपशम के बाद ही क्षायिक होगा। उसी प्रकार आत्मानुभूति या निर्विकल्प समाधि के लिए सर्वप्रथम पहले तो सराग सम्यक दर्शन होगा, सर्वप्रथम पहले तो सराग सम्यक दर्शन होगा, फिर इसके उपरांत वीतराग सम्यक दर्शन होगा। जिसके ऊपर श्रद्धान, जिसको प्राप्त करने के योग्य माना है, उसमें वह लीन हो जाता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन माना जाता है। इसलिए व्यवहार के द्वारा देहगत जो आत्म तत्व है वह देहाश्रित होकर के स्तुति करता है, देह के स्तुति का है, देह के स्तुति करने से आत्मा का स्तवन हो जाता है, यह व्यवहार है। नास्ति दोष, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उसको एकमेक मानना यह दोष है। अब देखो अरहंत परमिष्टि भी मंगल है, सिद्ध परमिष्टि भी मंगल है, लेकिन अरहंत परमिष्टि संसारी जीवों के लिए परम मंगल है। इसलिए परम मंगल है कि छद्मस्थ अवस्था में किसी को भी सिद्ध परमिष्टि का साक्षात्कार नहीं हो सकता, वह साक्षात संबंध नहीं। जिन जिन पदार्थों के ऊपर विश्वास किया वह विश्वास है, श्रद्धा के माध्यम से उनको जानता है, लेकिन यदि साक्षात्कार होता है तो केवल ज्ञान होने के उपरांत होता है। सिद्ध परमिष्टि अनंतानंत है, लेकिन केवल ज्ञान के वो विषय है, हमारे लिए तो श्रद्धान के विषय है। तो श्रद्धान का विषय अलग वस्तु, श्रद्धान का विषय हमेशा हमेशा प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, परोक्ष हुआ करता, क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा ही वह विषय या श्रुत ज्ञान के द्वारा विषय किए जाते हैं। तो उनके पास जो परंपार मति ज्ञान के द्वारा ही वह विषय या श्रुत ज्ञान के द्वारा विषय किए जाते हैं, तो उनके पास जो परम पारिणामिक आदि के भाव हैं, उन परम पारिणामिक भावों को यह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बना सकता। एक दूसरी बात देखो, मनफरे ज्ञानी है, गणधर परमिष्ठि है, सभा में बैठे हैं, किसी ने पूछा इस सभा में कितने भव्य है और कितने अभव्य है बताओ, तो गणधर परमिष्ठि ये उत्तर देंगे, मैं सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति तो हूं, लेकिन इसको बताने का श्रेय तो केवल केवली भगवान को है, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? डायरेक्ट भव्यत्व और अभव्यत्व ये पहचान में नहीं आ सकती। सम्यक दर्शन है, दर्शन मोहनी का क्षय सूक्ष्म है या विषय हो गया उसका, अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, इतना ठीक है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव है, उसकी अब कौन भव्य और कौन अभव्य यह अन्य चार ज्ञानों का विषय नहीं है, केवल वह केवल ज्ञान का विषय है। मत एक हमने एक प्रश्न किया है, अब कौन भव्य और कौन अभव्य यह अन्य चार ज्ञानों का विषय नहीं है, केवल वह केवल ज्ञान का विषय है। मत एक हमने एक प्रश्न किया है, अभव्य के कोटि है क्या? नहीं, इस इर्द गिर्द कोई भी आए हैं वो भी समोचरण का ही अंग है, समोचरण का एरिया तो वही है, अवधि तो सीमा तो वही ही है, उसमें अभव्य आए हैं तो कहां तक आए, कितने हैं, तो कोई नहीं बता सकता, मन परिज्ञानी उसको नहीं बता सकता, गणधर परमिष्टि के ज्ञान का विषय वह नहीं हो सकता। ऐसे क्यों है? तो ये हमारा अधिकार का विषय नहीं। तो पारिणामिक भाव को पकड़ने की क्षमता केवल ज्ञान के पास ही सिद्ध हो जाता, और किसी के पास नहीं। तो ये देह के आश्रित जो स्तुति वंदना और दर्शन वगैरह हैं, ये एकांत से इससे कुछ ताल्लुक नहीं, संबंध नहीं है। तो धवलादि ग्रंथों में देह में जब तक स्थित हैं तब तक उनको भाव निक्षेप के अपेक्षा से अरहंत परमिष्टि कहा। ये निषेध या निश्चय ने का विषय है कि व्यवहार ने का विषय है? भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप गत जो भगवान हैं, इनमें अंतर डालो। तो भाव निक्षेप क्या वस्तु है, वो भी देहाश्रित है क्या? नहीं, वो भी देहाश्रित है और यह भी देहाश्रित है, लेकिन देह के आश्रित जो स्तुति वंदना और दर्शन वगैरह हैं, ये एकांत से इससे कुछ ताल्लुक नहीं, संबंध नहीं है। तो धवलादि ग्रंथों में देह में जब तक स्थित हैं तब तक उनको भाव निक्षेप के अपेक्षा से अरहंत परमिष्टि कहा। ये निक्षेप यह निश्चय नहीं का विषय है कि व्यवहार नहीं का विषय है। भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप गत जो भगवान हैं, इनमें अंतर डालो तो भाव निक्षेप क्या वस्तु है, वो भी देहाश्रित है क्या नहीं, वो भी देहाश्रित है और यह भी देहाश्रित है, लेकिन उनको जीवित अवस्था क्योंकि उसी पर्यायगत है, शरीरस्थ है, इसलिए भाव निक्षेप कहा गया है। वस्तुतः वह व्यवहार ने का विषय है क्या निश्चय ने का विषय है ऐसा पूछा जाएगा तो वह भी व्यवहार ने का ही विषय है ऐसा कहा जाएगा। और बिंब में जो भगवान है उसके लिए कहा जाएगा कि यह व्यवहार का और व्यवहार जो उपचार ने का विषय है क्योंकि यह बिंब है, इसमें देह नहीं है, देह का आकार है, देह में देहस्थ जो जीवात्मा है उसको लेकर के चलता है, उसको भाव निक्षेप कहा है। वैसे भाव निक्षेप के अपेक्षा से देखते हैं तो सिद्ध परमेष्टि ही मुक्त और भाव निक्षेप में आ जाता, जो जीवात्मा है उसको लेकर के चलता है, उसको भाव निक्षेप कहा है। वैसे भाव निक्षेप के अपेक्षा से देखते हैं तो सिद्ध परमेष्टि ही मुक्त और भाव निक्षेप में आ जाते हैं, अर्हत परमेष्टि मुक्त नहीं है। और यदि है भी है तो चार कर्मों से मुक्त है, लेकिन वह भी हमें देखने को उपलब्ध नहीं होता है। समोशरण में स्थित जो महाराज हैं वो महाराज स्नातक महाराज माने जाते हैं, किंतु वे 13वें गुणस्थान में हैं ऐसे हमारी आंखों के द्वारा परीक्षित निर्णीत नहीं हैं। हमने मन के द्वारा श्रवण उपदेश इत्यादि सुन करके पढ़ करके फिर बाद स्वीकार कर लिया है। समोसरण में जाने के उपरांत भी आपको मान लो प्रशिक्षित नहीं है तो ये ज्ञात नहीं होगा ये 13वें गुणस्थान वर्ती महाराज हैं। हम थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं इसलिए तुम समझते नहीं हो, ऐसा हम दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वहां पर हमारा आधार आंख नहीं है किंतु हमारा आधार श्रद्धा है। समोसरण में जाने के उपरांत भी आप भगवान की पहचान ये 13वें गुणस्थान वर्ती हैं ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह परोक्ष ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। 13वें गुणस्थान कहने में बहुत आता है लेकिन उसकी पहचान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तिलमिला जाता है, श्रद्धान 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 कब तक करें, हमें संवेदन हो नहीं रहा है, हमें संवेदन करवाओ। ये भीतर से ऐसी इसकी मतलब एक वेदना जैसी होनी चाहिए, संकलेश जैसा होता है, तब कहीं जाकर के सब कुछ छोड़ करके तुम यदि ऐसा करना चाहते हो तो बैठ जाओ और आंख बंद कर दो। जब आंख के द्वारा हम भगवान को साक्षात 13वें गुणस्थान वर्ती देख नहीं रहे हैं तो इन आंखों से क्या मतलब है। मैं हमें आंखों से भगवान को साक्षात देख करके आया ऐसा कोई कहता है तो क्या देखा बताओ। आखिर 500 धनुष अवगाहना वाले, 7.5 या 7 हाथ वाले भगवान, महावीर भगवान, और कौन सा देखा बताओ तो। अज्ञानी संसारी प्राणी इतना उलझता चला जाता है, बहुत उलझता चला जाता है, भीतरी परिणामों के बारे में हमेशा हमेशा श्रद्धान रख करके ही चलना पड़ता है, और वो श्रद्धान के द्वारा संवेदना नहीं होती है इसलिए वह तिलमिला उठ जाता है, कभी कभी बहुत संकलेश होने लग जाते हैं, सुनते सुनते सुनाते सुनाते पढ़ते पढ़ते वही वाक्य वही गाथा वही चिंतन वही शंकाएं वही व्यक्ति वही सभा वही स्थान वही परिणाम, हे भगवान अब हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं तो हम क्या कहें, वस्तु स्थिति ही ऐसी है। पेज का अंतर है, वही बोले पलटते पलटते पेज अंतर है महाराज, दोबारा पलटोगे तो वही पलटोगे, एक बार वही गाथा आते। आखिर आपको अद्वितीय अभूतपूर्व क्या विचार में आया बता? कुछ नहीं आता। सुनते हैं स्वर्गों में इंद्र सभा लगती है और इंद्र को द्वादशांग के पाठी मानते हैं। ये आज का विषय मध्यान्ह में नहीं, सुबह का विषय मध्यान्ह में नहीं, मध्यान्ह का विषय कल सुबह नहीं। इस ढंग से उनका स्वाध्याय होता, फिर भी चर्चाएं समाप्त नहीं होती बताते, लेकिन फिर भी उनको सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र कई नहीं कहो, बस एक ही पंक्ति में दो सागर तक स्वाध्याय कराया इंद्र सभा में और कुछ नहीं। इंद्र को भी वह फिर क्या स्वाध्याय कर ली, क्या चर्चा हो गई, दो सागर काल और कुछ अधिक इसको निकालने के लिए टाइम पास किया है, कुछ नहीं। इसलिए व्यवहार के माध्यम से आज जो कार्य हो सकता है भीतर यदि आपका श्रद्धान है तो वह व्यवहार कार्यकारी आपको है, नहीं है तो वह व्यवहार व्यवहाराभास हो जाता। केवल निश्चय को पकड़ करके चलेंगे तो भी वह व्यवहार के माध्यम से ही आप निकल पकड़ करके चल सकोगे, क्योंकि व्यवहार से पढ़ा है, व्यवहार से सुना है, वही निश्चय का विषय बन सकता है जो श्रद्धान का विषय बनेगा। निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि बहुत कुछ कुछ ताजा मिल रहा है वहां पर, कोई ताजा नहीं है। जो व्यवहार के द्वारा सुना हुआ है, सुना हुआ ही विश्वास का विषय बनता, और कोई ताजा नहीं। बल्कि इसलिए न्याय के ग्रंथों में प्राय करके मति ज्ञान को तो कथनचित साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष उपाधि से घोषित किया, किंतु श्रुत ज्ञान को तो उन्होंने कहा कि यह तो शुद्ध परोक्ष है, इसमें संवेदन का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, निर्विकल्पता जब आ जाती है, स्वानुभव प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, उस समय इसको प्रत्यक्ष अवश्य कहा है। लेकिन वह भी कैसा प्रत्यक्ष है? तो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान के अपेक्षा से यह प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान के अपेक्षा से परोक्षमेव, ये शब्द है वहां पर। तो दोनों तरफ से हमें परोक्ष ही हाथ लग रहा है और परोक्ष ही हाथ लगेगा, लेकिन परोक्ष भी साधन है, यह भी श्रद्धान का विषय बनना चाहिए। यह व्यवहार है ऐसा और हम घटिया टोन के साथ कह दें तो फिर यह सम्यक दर्शन भी प्रश्नार्थक चिन्ह लग जाएगा उसके, क्योंकि उत्साह के साथ कहिए यह व्यवहार है जो निश्चय का साधन होता है। कुछ भी नहीं देखा, देख ही नहीं सकते, जैसे कि परंपरा से चार पांच पीढ़ी आ गए, वो जो दादा परदादा थे अच्छा कौन थे, बहुत अच्छा, ऐसा विश्वास कर लिया जाता है। दूसरे को बात सुन करके, माता पिता भाई बहन और अड़ोस पड़ोसी व्यक्तियों को सुन करके कहा जाता। इसी प्रकार वो चूंकि झूठ नहीं बोल सकते, जैसे व्यवहार चलाने के लिए वो झूठ नहीं बोल सकते, उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र या अन्यथावादी नहीं हुआ करते, ऐसा श्रद्धान करके और अपनी कल्पना के माध्यम से या कल श्रद्धान के माध्यम से ऐसा विषय बना लेता है और उसके माध्यम से ही वह आगे अपनी यात्रा करता रहता है। इसके आगे और कुछ हमारे कदम उठते ही नहीं, आधार के बिना हमारे कदम उठते ही नहीं, आधार के बिना हम कुछ ज्ञान के द्वारा सोच ही नहीं सकते, बिना आधार तो हमारा जीवन ही समाप्त जैसा है, प्रत्येक क्षण हमारा आधार सहित चलता। तो शरीर आत्मा चले जाने के उपरांत भी शरीर रह जाता है, उसके लिए भी धवलादि ग्रंथों में षटकंड आगम के सूत्र में मंगल कहा है। त्यक्त चावित और चुत, त्यक्त और चावित ये दोनों मांगलिक हैं और चुत जो है यह मांगलिक नहीं। अपने आप छूट गया, अपने आप छूट गया, मांगलिक नहीं हो सकता। उपसर्ग इत्यादि के द्वारा चावित हो गया वह मांगलिक है, क्योंकि मुनि महाराज का वह शरीर है। और त्यक्त इंगनी भक्त प्रत्याख्यान प्रायोगिक वर्ण इत्यादि समाधि के द्वारा जिन्होंने नौकर में शरीर को छोड़ा है आहार पानी के त्याग के साथ और जोशता उत्साह के साथ रुचि के साथ श्रद्धा के साथ किया है, तो वह शरीर भी मांगलिक है। मांगलिक का अर्थ क्या होता है? मलं पापं गालयति इति मांगलिक। और औदयिक भाव को भी उन्होंने मांगलिक कहा। अब देखो, औदयिक भाव को भी मांगलिक कहा है और उद्धौला का विषय है, षटकंड आगम का विषय है। ये कैसी बात है, आप औदयिक भाव को? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति की जो उदीर्णा है उस उदीर्णा के काल में वह औदयिक भाव है। तीन लोक में एक प्रकार से कल्याणकारी प्रकृति है, सबको उपदेश देने में सार्थक होती है, तो वह एकमात्र तीर्थंकर प्रकृति है। उसकी उदीर्णा के कारण वह पूरा का पूरा समूह शरण ही मांगलिक हो जाता है। समूह शरण के इर्द गिर्द जो परिसर है वह सब मांगलिक हो जाता है। और उसमें जाकर के जो आते हैं, भैया हम तो समूह शरण नहीं आ सके, आपके चरण रज को हम स्पर्श करते हैं क्योंकि आप ही मांगलिक है, क्योंकि मंगल को छू करके आया। ये सारे के सारे निश्चय है, क्या व्यवहार है ऐसा पूछा जाएगा कि ये भैया ये व्यवहार होते हुए भी निश्चय की ओर ले जाने वाले। और मल का गालन वह वस्तुतः एक फैक्ट है, मल का गालन एक फैक्ट। अच्छे भगवान का क्या से बताएं, क्या से? अरे पुद्गल का अच्छे, पुद्गल का अच्छे नहीं हो सकता। पुद्गल में भी अच्छय आता है भगवान की उपस्थिति में। एक ही भाव स्तोत्र के एक छंद आता है और उसमें हे भगवान ये मानस्तंभ ये किसका प्रभाव है? मानस्तंभ मणिमय तथा मान का स्तंभ भाता, वह मान का स्तंभ भाता है, मणिमय है, इसमें ऐसी शक्ति कहां से आई प्रभु? तो आपकी वजह से आई है, आप उसमें उपस्थित रहते हैं तो वह मान स्तंभ है, नहीं तो वह स्तंभ है। बिल्कुल इसमें कोई इसने शक्ति वह आपकी उपस्थिति के बिना नहीं आ सकती। ये आपका प्रभाव है भगवान। इस पुद्गल में भी मल को गालने की क्षमता आ गई। जो भो भो में जो मान बैठा हुआ उस मान को खंडित करना चाहते हैं तो मान स्तंभ को देख लो, तो अपने आप ही नतमस्तक हो जाओगे। ये मांगलिक आ गया, मान स्तंभ को देखते नमस्कार कर जाते हैं। ये पुद्गल है कह तो देख लो, तो फिर क्या होता? इसको पुद्गल कह देंगे हम, इसको मांगलिक नहीं कह सकते हैं। इसे कहेंगे तो ऐसी निकाजित कर्म का बंद हो जाएगा, वो मान छूट ही नहीं सकेगा। और बहुत देर के बाद जब पिघलेगा उसमें कुछ कमी आएंगे तब कुछ बात समझ में आएंगे। अभी दो स्थानी उदय है तो समझ में आ सकता है, यदि तीन स्थानी और चतुस्थानी उदय आएगा तो कोई भी यहां पर उपदेश देने वाला ही नहीं। तीर्थंकर हो या और कोई भी हो, उसके कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये कहां से आ गया प्रभाव? इसको मांगलिक घोषित किया है। और इंद्रभूति का जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उस मानस्तंभ का ही परिणाम है। ध्यान रखो, भगवान तो बाद में दिखने में आए जो भाव निक्षेप में है, किंतु मानस्तंभ में और जो प्रतिमा यदि है तो मानस्तंभ की प्रतिमा भाव निक्षेप से नहीं किंतु स्थापना निक्षेप से, और स्थापना निक्षेप के माध्यम से ही उसको देख करके वो पिघल गए। फिर बाद में महावीर भगवान का दर्शन हुआ और वो भी महावीर भगवान शरीर से दिखे, भीतर नहीं दिखे, दीक्षित हो गए तो फिर भी वह श्रद्धान के विषय बने। जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उस दिन महावीर भगवान कौन थे वस्तुतः गंधर्व परमिष्ठ को देखने में मिल गया। तब तक वो श्रद्धालु में विराजमान थे। ये शाम को इनको केवल ज्ञान हो गया, बारह घंटे के बाद सिद्ध बनने के उपरांत बारह घंटे के बाद इनके ज्ञान के विषय बने, तब उनको परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुआ। पहले तो महावीर भगवान जैसे थे उन्हीं के ऊपर श्रद्धा था और उन्हीं के ऊपर गाढ़ श्रद्धा रखा था, इसलिए क्षायक सम्यक दर्शन हुआ। क्षायक सम्यक दर्शन साक्षात भगवान को देखने से नहीं होता, किंतु शरीरस्थ जो भाव निक्षेप वाले भगवान है उनको। इसलिए शुद्ध निश्चय का विषय अर्हत परमेष्टि नहीं है, ध्यान रखना। अर्हत परमेष्टि शुद्ध निश्चय के विषय बन ही नहीं सकते। 34 अथ से ये 46 गुण ये सारे के सारे व्यवहार नहीं के विषय है, शुद्ध निश्चय नहीं के विषय हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी निश्चय सम्यक दर्शन यदि प्राप्त होता है तो इसी आधार पर होता है। ऐसा यदि गाढ़ श्रद्धान होता है, हे शिष्य कहते हैं कि व्यवहार के अपेक्षा से देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता और यह उपयुक्त है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्तन निर्मापित त्रिगुणेक ललाम भूत तामंत एव खलु ते पृथिव्याम परमाणव यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। इस प्रकार एक छंद का निर्माण हुआ तो मान तुंगाचार्य को एक और बल प्राप्त हो गया। ये कौन सी भक्ति है? व्यवहार की भक्ति है। लेकिन भक्ति व्यवहार के होते हुए भी यह भीतर कर्म टूट रहे हैं कैसे नहीं टूट रहे हैं आपको मालूम पड़ेगा। बाहर से जब टूट रहे हैं तो भीतर से क्यों नहीं? आप तोड़ करके देख लो, घन पकड़ने के घन पटक लो तो भी नहीं टूट सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा वह टूट जाता है। दोनों तरफ से टूटन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए बंधु व्यवहार को ऐसा नहीं समझो। व्यवहार वह व्यवहार है जो निश्चय का साक्षात कारण माना गया, साधन के बिना साध्य उपलब्ध नहीं होता। ऐसा निश्चय करना यही एकमात्र सम्यक दर्शन आज है। और जब आप विकल्प छोड़ करके बैठोगे उस समय निर्विकल्प समाधि में वीतराग सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, जो इसी के बलबूते पर होगा। दही को मथोगे तभी वह नवनीत का गोला आएगा। नवनीत निश्चय है तो दही व्यवहार है, और दही में मथानी डाल करके वह मंथन करना निश्चय की ओर यात्रा कहलाते। लेकिन पानी का मंथन करके आप नवनीत का गोला यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। इसलिए वह मथना भी बेकार हो जाएगा। देह स्तवन के माध्यम से आत्मा का स्तवन होता है, इस प्रकार किया जाता है। प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं हम, ये सारे के सारे व्यवहार में आते हैं, निश्चय में है ही नहीं। 28 मूल गुणों का पालन ये व्यवहार में आता है। यदि यह व्यवहार गलत है, इसके द्वारा धर्म कर्म नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चय क्या है? आकाश फूलवत है, वह आ ही नहीं सकता। इसी व्यवहार की वह देन है, इसी व्यवहार का वह कार्य साध्य है, इसी व्यवहार की वह फलश्रुति है। व्यवहार फूल है तो निश्चय फल है, फूल के बिना फल का दर्शन संभव नहीं। लेकिन फूल को ही फल मान करके चलना बेटा ठीक नहीं है। देह के स्तवन से आत्मा के स्तवन मानना, लेकिन व्यवहार से मानना निश्चय से नहीं, ऐसा कहा। तथा इनमन्नम जीवादो देहम पुगलमयम थुनितुमुनि मन्न दिहु संतुदो वंजिदो मये केवली भयवम। हाँ, इस प्रकार जीव से पृथक रूप जो देह है, शरीर है, जो पौद्गलिक माना जाता, उसी के वर्ण इत्यादि देख करके, उसकी दिगंबरत्व को देख करके और उसकी विरागता को देख करके, देह में विरागता कैसी? तो फिर देह में राग कैसा, ये भी प्रश्न उठेगा। देह में श्रृंगार कैसे? देह जड़ है तो जड़ को श्रृंगारित करने वाला कहां ज्ञानी हो सकता, ये क्यों नहीं कहा जाता है? देह की स्तुति करने से, देह की स्तुति करने से भगवान की यदि स्तुति नहीं होती है तो देह को श्रृंगारित करके और मैं अच्छा रूपवान ऐसा जो मानते हैं वो कहां का श्रद्धान है? वो निश्चय का श्रद्धान कैसे हो रहा है? दुनिया में ये दुनिया का प्राणी सुबह से लेकर के शाम तक व्यवहार का काम करता है और देह के श्रृंगार से आत्मा का यदि श्रृंगार नहीं है, देह की स्तुति से आत्मा का यदि स्तुति नहीं है, भगवान की स्तुति नहीं है, तो देह के श्रृंगार में क्यों, देह को भोजन देने से आत्मा में क्या आता है मुझे बताओ? चरित्र मोह विश्लेषण संयम पैसुरनाथ ये कह लेते हैं कि चारित्र मोहन के वजह से हम भोजन कर लेते हैं कि चारित्र मोहन के वजह से हम भोजन करना पड़ता, श्रृंगार करना पड़ता, ये करना पड़ता, गलत है। इसलिए कि उसमें कुछ है, उसकी सुरक्षा इसके द्वारा है, ऐसा वह प्रकार अंतर से मानता भले मुख से कहे या न कहे। इस मान्यता को यदि उद्घाटित कर देते हैं तो हम सबके इक्वल एक ही श्रेणी में अमा जाएंगे, ये डर है। इस डर के कारण यदि मानता है तो और बड़ा खतरा है। इस व्यवहार को इस व्यवहार के रूप में स्वीकार करो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आत्मा को मानते हुए भी देह के आश्रित आत्मा हैं, दोनों एक तो नहीं निश्चय में, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति है, इसको स्वीकार करना और देहस्थ जो भगवान तेरे गुणस्थान वर्ती हैं उनको स्वीकार करना और देहस्थ आचार परमेष्ट हैं उनको भी स्वीकार करना और देहस्थ उपाध्याय परमेष्ट को स्वीकार करना और देहस्थ साधु को भी स्वीकार करना और बिंब में जो स्थित भगवान है उनको भी स्वीकार करना, यथावत स्वीकार करना। इसी के माध्यम से आज स्तुति वंदना आदि आदि हो सकते हैं और इसी के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। यह श्रद्धान मजबूती के साथ होना चाहिए। इसको यदि बिल्कुल लचकदार कर दोगे तो ये ध्यान रखना लचकदार का कोई भी यात्रा ठीक नहीं होती। पैर रख रहे हैं, रखो या नहीं रखो, उपचार से रखो, उपचार से रखो तो कमर में ही दर्द हो जाएगा, लचक जाएगा, पैर लचक जाएगा तो आप नीचे बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे तो उठाने वाले के लिए कौन आएगा? निश्चय को कह दो ये निश्चय उठा दे, निश्चय कभी भी उठाने वाला नहीं है, व्यवहार ही आ जाता है और उस व्यवहार को व्यवहार वाला ही उठा सकता है और निश्चय को भी व्यवहार उठा सकता है। निश्चय कभी उठता नहीं, वह रहता वहीं का वहीं रहता है। इसलिए सोचना चाहिए कि व्यवहार का और निश्चय का कितना गठबंधन और कैसा है उसका रूप, बहुत अद्भुत है। आचार्य कुंद कुंद जैसे कहते हैं भगवान क्या कहें। समंत बद्री तो एक बार एक स्थान स्तुति विद्या में तो ये लिख दिया कि हे भगवान मैं समिति के द्वारा ही आपकी भक्ति करते हुए भी ही आपके पास आऊंगा, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और स्वामी समंत कहते हैं गुप्ती ने गुप्ती गौण कर दूंगा, इस भक्ति में शक्ति है भगवान आपको आना पड़ेगा। गुप्ती के द्वारा तो आत्मा आती है और भक्ति के द्वारा तो भगवान आते हैं हमारे सामने, हमें तो भगवान को बुलाना। गुप्ती के द्वारा तो आत्मा आती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, और भक्ति के द्वारा तो भगवान शुद्ध हो जाते हैं। हमें तो पहले भगवान सिद्ध करना है फिर बाद में जो है आत्मा को सिद्ध करना है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, हम भक्ति बनाएंगे और भगवान को ले आएंगे और सिद्ध करेंगे, कैसा नहीं होता देखेंगे। ये कितना आत्मविश्वास है आपके माध्यम से ऐसा हुआ, ये बहुमान आपके माध्यम से निजी दृष्टि मिली, ये बहुमान याद आता है मैं पात्र हूं मुझे समझू। ये समंत भद्र महाराज आ गए, समंत भद्र महाराज के सामने चंद्रप्रभु भुकमान आ गए। खेल नहीं बंधु, स्वप्न में तो एक बार देखा हो, देखेंगे कितनी बार भगवान के दर्शन करते हैं, कितनी बार भगवान के प्रतिदिन तीन तीन बार भगवान के दर्शन करते हैं, एक बार तो देख लो साक्षात मूर्ति आती है क्या? अरे स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेत मामा स्तुत्यः फलम तस्तः सत्यः। सिद्ध परमेष्ठी वहां है, वहां से इधर आ ही नहीं सकते। अब वहां पर जाकर के हम स्तुति कर ही नहीं सकते। पहले सिद्ध परमेष्ठी को निकाल दो पंच परमेष्ठी में से एक, वो आएंगे नहीं और हम जाएंगे नहीं। जब कभी जाएंगे तो सिद्ध बनकर के जाएंगे, फिर उनकी स्तुति कैसे करें। भवेत वा मावा, कोई भी हो या न हो, स्तुति करने वाला जो स्तोता है उसके लिए फल तो निश्चित मिल ही जाता है। हे नमिनाथ भगवान, आप यहाँ नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहोगे मैं नहीं देख रहा हूं आपको। आप तो मुझे देख ही रहे हैं, लेकिन आपकी ही कृपा से मैं आपको भी देख रहा हूं। यहां नहीं है, नहीं सही। और क्यों नहीं है? श्रद्धा का विषय तो आप हैं, श्रद्धा का विषय आप हैं, उसके द्वारा हम सब कुछ काम कर लेंगे। क्या नहीं कर सकते? भक्ति और श्रद्धा सब कुछ कर सकते। ये सारे के सारे व्यवहार के विषय हैं, लेकिन समंत भद्र ऐसे व्यवहारी थे जो निश्चय को भी बुलाते थे। यहीं पर बैठो, मैं तो आ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मेरे नमस्कार को सहन करने की क्षमता एकमात्र चंद्र प्रभु भगवान के पास है। हम नमस्तु करते हैं, ये मेरा निश्चय है, वो ही झेलेंगे, अन्य कोई झेल नहीं सकता, ये उनका कहना है बस। मन मिला तो चित्त मिला तो चेला करना, वित्त मिला तो मेला, और साधु मिले तो संगति करना, ना तो भला अकेला। ये चित्त मिल गया, बना लिया, कर गए और हिला दिया, दुनिया को हिला दी। ऐसे ऐसे महान कट्टर, बस सब कहते भैया कट्टर कुछ नहीं। दृढ़ता सब में रहती है, लेकिन सही दिशा में दृढ़ता अपने आप में कार्यकारी। यह 50 वर्ष हो गए व्यवहार कहीं पिट रहा है, कहीं निश्चय टिक रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या व्यवहार और क्या निश्चय। बड़े बड़े आचार्यों ने व्यवहार के कितने बड़े काम किए हैं, उसको देख लेना चाहिए, उसके पीछे चलने का प्रयास करना चाहिए।